तो सवाल क्या है कि क्या हमें आने वाली नस्लों का गम है औलादें। ये जो इस दुआ में हमने औलादों का तस्करा पढ़ा है ना कि ऐसी औलाद जो मेरे सर पे चढ़े, या आप अगर लफ्ज़ देख रहे हैं ना, यकून अलैया रब, रब कौन होता है? अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, वो औलाद जो मेरा आका बन जाए, मेरा रब बन जाए, क्योंकि रब अरबी में मजाजी मानों पे भी बोलते हैं। अल्लाह के नबी के एक हदीस से मिलता है कि क्यामत के करीब औलादें इतनी नाफरमान हो जाएंगी कि लोग बे औलाद को देख कर कहेंगे तुम कितने खुशबख्त हो कि तुम्हारी औलाद नहीं है। सहाबे किराम ने जब अल्लाह के नबी से ये बात सुनी कि लौंडी अपने आका को जनेगी, तो सहाबा बड़े हैरान थे कि ये तो आम मसला है कि जो लौंडी बच्चे को जन्म दे दे वो फिर लौंडी कहाँ रहेगी। आका का क्या मतलब है? का औलाद इतनी नाफरमान होगी कि अपने माँ बाप को ऐसे ट्रीट करेगी जैसे गुलामों को आका ट्रीट करते हैं, और ये वक्त आने वाला है। हो सकता है आपके महज़ब माशरे में, जो कि मैं हमेशा उम्मीद रखती हूँ माशाल्लाह आपके घरों में दीन है, आपके बच्चे भी महज़ब हैं, ये ना हुआ हो, लेकिन बाहर की दुनिया अब इससे पाक नहीं रही। और इधर भी हमारे मुल्क में वो माँ बाप जिन्होंने बच्चों को दीन नहीं दिया वो कुछ इसी की तस्वीर करते हैं। पहले बच्चे और माँ बाप के रिश्ते में बहुत फ़र्क था, बच्चे माँ बाप से डरते थे, आज माँ बाप बच्चों से डरते हैं। पहले बच्चे माँ बाप को खुश करने की कोशिश करते थे, आज माँ बाप बच्चों को खुश करने की, क्या खुश रखने की कोशिश करते हैं। वो खुश हो जाएं और बात है, लेकिन वो खुश रहते कोई नहीं। वो उस दिन खुश है जब आपने उनकी पसंद का गैजेट दे दिया, या आपने उनकी ऑर्डर पे पिज़्ज़ा मंगवा दिया 1,000 रुपये का। वो वक्ती सी खुशी होती है, बाद में बदल जाती है। तो आज हम यहाँ जिस बात को लेकर बैठे वो नस्लों का गम, हम और हमारी औलादें। नस्लों की फिक्र हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को थी। आप सब ने हज़रत ज़करिया की कहानी पढ़ी होगी, सूरह आले इमरान में भी है और सूरह मरियम में भी है। क्या कहा था अल्लाह को कि अल्लाह मुझे एक वारिस चाहिए जो मेरा और आले याकूब का वारिस हो, बुढ़ापे की औलाद। रब्बी हबली मिन लदुन का वलदन तय्यिबन या ज़ुर्रियतन तय्यिबा। हज़रत ज़करिया ने 70-80 की एज से ऊपर जाकर अगर औलाद की तलब की थी तो वो ये नहीं थी कि जायदाद का वारिस मिल जाए, मेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाए, मुझे पानी देने वाला हो जाए, बल्कि क्या था कि ये जो दीनी विरसा छोड़ के जा रहा हूँ इसका वारिस हो जाए, क्योंकि अम्बिया की कड़ी में से थे। थोड़ा सा आप आगे जाते हैं, वही हज़रत याकूब अल मौत, अभी आपने आयतें भी कुछ सुनी है ना शुरू में। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिस्तरे मर्ग पर अपनी औलाद को क्या वसीयत की थी? मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो फिर बच्चों ने क्या कहा था? अब्बा आप गम ना कीजिए, हम आपके और इब्राहिम के और इस्माइल के रब की, और वो कौन होगा? इलाहुम वाहिद, उसकी इबादत करेंगे। कितनी सुकून की नींद आई होगी हज़रत याकूब को, कितनी मीठी मौत होगी उनकी कि उनको ये फिक्र नहीं रही कि मेरे बाद मेरे बच्चे इस्लाम छोड़ देंगे। आज मैं दिल बुरा नहीं करना चाहती, मैं मानूं दिल भी नहीं जा रहा कुछ कहने को, इस वक्त का फैशन, फैशन कहते हैं ना, कभी कभी हर दौर का एक फैशन होता है। मॉडर्निज्म किसका नाम होता है? मॉडर्न कपड़े पहनने का नाम फैशन है, और इसी तरह से कुछ खास टोन इस्तेमाल करना, अब वो ख़त्म हो गया। आज के दौर का फैशन क्या है? सिर्फ चंद हिंट्स दे दूं, आई एम नॉट अ मुस्लिम, आई एम एथियस्ट, आई एम एग्नोस्टिक। ये मैं दिल पे पत्थर महसूस कर, मैं कोई आपसे मुबालगा नहीं कर सकती, ये मेरे दिल के ऊपर के पपोले हैं जो मुझे हर हफ्ते 10-12 दिन में कहीं ना कहीं से सुनने पड़ते हैं। आज हम मुसलमानों की नस्लें जिस तेज़ी से इस्लाम छोड़ रही हैं उतनी ही तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम इस्लाम में आ रहे हैं। दैट्स वाई इस्लाम इज़ अ मोस्टली स्प्रेडिंग रिलीजन, स्टिल इस्लाम वाइडली स्प्रेड हो रहा है, नए लोग इस्लाम में आ रहे हैं और हमारे रिवायती मुसलमानों के बच्चे इस्लाम को खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। मैं उस माँ को भी जानती हूँ और उस बच्चे को भी जानती हूँ जिसने अपनी 18th बर्थडे का गिफ्ट अपनी माँ को क्या दिया था। जब सुबह हुई 18th ईयर का वो बच्चा हुआ तो माँ बच्चे के कमरे में जाती है और उधर एक ख़त पड़ा हुआ है, और वो ख़त खोल के पढ़ती है और उसने कहा कि जो भी कहा दुख की बात है इसको क्या सुनाऊँ, आई एम गोइंग आई एम लीविंग होम, डोंट ट्राई टू फाइंड मी, आई वॉज वेटिंग फॉर माई 18th बर्थडे, बिकॉज अगर कल मैं ये काम करता तो आप पुलिस को भेज के मुझे बुला सकते थे, क्योंकि अमेरिका में जिस दिन आप 18 के होते हैं ना, तो उस दिन आप मादर पितर आज़ाद हो जाते हैं, फिर वो आपके घर में भी रहें तो उनको बेवकूफ़ी लगती है कि क्या बेबीज बनाए हुए, निकालो इनको घर से। बास गोरे तो खुद अपने हाथ से बच्चों को 18वीं बर्थडे पर कहते, जाओ बेटा तुम्हारी ज़िंदगी हमारी, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और वो बच्चा अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई बहन को रोता छोड़कर बगैर बताए चला गया, और आज तक नहीं पता किधर है। और उसने कहा कि आप मुझे ढूंढिएगा नहीं नेट पे, मीडिया पे, मैं अपना नाम बदल रहा हूँ, और आप मुझे किसी मुस्लिम डायरेक्टरी में मत ढूंढिएगा, आई एम चेंजिंग माई रिलीजन। क्या ये एक ही दिन में हुआ होगा? और मैं पर्सनली भी जानती हूँ कि कोई इतनी खुदा छोड़ी भी फैमिली नहीं थी। एक तो था ना, माँ बाप भी खुदा को छोड़े बैठे, इतनी भी नहीं थी। और मैं उस बच्ची को भी जानती हूँ कि जिसने अपनी दोस्तों को एक दावत दी, सरप्राइज पार्टी, फ्रेंड सर्कल में फैला दिया जी फलां दिन मेरे घर सरप्राइज पार्टी है, तो वो एक फैशन बन गया ना, जाके देखते हैं भाई क्या सरप्राइज फूटेगा। तो बिल्कुल हमारी क्लोज सर्कल साथी हैं, उनकी बेटी को भी ये मैसेज आया था कि आपको भी उधर जाना है, और आपको वो सरप्राइज क्या था? उसने अपनी सारी दोस्तों को बुलाया, खिलाया पिलाया, फिर इकट्ठे किया, फिर उसने कहा कि नाउ आई एम गोइंग टू डिक्लेयर यू कि आई एम नॉट मुस्लिम एनी मोर, आई एम एथिस्ट। और मैं तुम्हें इसलिए भी बता रही हूँ कि अगर तुम बाहर से सुनो तो हो सकता है तुम्हें सही समझ ना आए, तो मैं खुद ही बता दूँ, ये था सरप्राइज, मैं इस्लाम को छोड़ रही हूँ। और वल्लाह ही अल्लाह मुझे यहाँ बैठ कर कोई मुबालगा करने की तौफीक ना दे। ये ढका है कि छुपा है, ये अपेरेंट है कि नहीं, ये 1% है, 2 है, 5 है, लेकिन ये जरासीम, ये वायरस आ चुका है मुस्लिम नस्लों में। आज का फैशन, मैं नॉर्वे से आई हूँ, शुरू में जो बताया आपको, नॉर्वे इज नॉट इवन अ क्रिश्चियन कंट्री, दैट इज अ एथियस्ट कंट्री, जैसे पाकिस्तान का मजहब इस्लाम है, नॉर्वे का नेशनल रिलीजन एथियज्म है। एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं वो आपको खुदा फरामोश बनाने में, आपके बच्चों को वो जो पढ़ाते हैं, ये अभी इस लास्ट ट्रिप की, रिसेंट ट्रिप की कहानी है, टीचर्स जो साइंस पढ़ती पढ़ाती कॉलेजों में, रेगुलर अमेरिकन स्कूलों में पढ़ाती, जो बच्चा साइंस पढ़ जाता है आज, वो खुदा का इनकार कर रहा है। ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, एक तो ये मसला है, आपको खुदा से दूर कर रहे हैं, और दूसरा जो इससे भी बड़ा है, नस्लें ख़त्म हो रही हैं, वो क्या है, LGBT, इधर भी है उसकी कोई बूंदाबांदियाँ, कहाँ जा रहे हैं हम, कैसे चीन आता है, कैसे इतने शॉपिंग प्लाजे आबाद हैं, कैसे सिंध भारत बड़ा बड़ा है, कैसे शादियों में 1,000 बंदा जाके खाने खाता है, सांप के बिल में हाथ रखा और बंदा आराम से बैठ जाए, क्या हो गया हमारी नस्लों का, क्या बनेगा? आपके बच्चों से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की जा रही है। मैं फर्स्ट हैंड बात कर सकती हूँ आपके साथ, किसी दूसरे तीसरे की बात की मुझे ज़रूरत नहीं है। जिसको आप यहाँ डे केयर कहते हैं, बच्चों की मॉन्टीसरीज कहते होंगे, नॉर्वे में इसको बारने हागे कहते हैं, 2.5 साल का बच्चा लेके माएँ चल पड़ती हैं, अल्लाह के लिए इसको कोई दाखला दे दे, 3 साल में तो दे ही देंगे। तकरीबन मेरा जो आखिरी इल्म है, 3,000 क्रोन मंथली कम से कम देते हैं लोग, जो आपके हिसाब से 60,000 रुपीज़ बन जाएंगे ऑलमोस्ट। शुक्र करती हैं माएँ, अब बच्चा कुछ घंटे जाके वहाँ गुजारेगा तो हम आज़ाद होंगे। और वो आपके 3 साल के बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, उनके थीम्स, उनकी बातें, देर इज नो बॉय, देर इज नो गर्ल, मामा मामा, 3 फैमिलीज पढ़ाते हैं वो, उनकी बुक्स हैं, सिलेबस बन गए, आपके डे केयर्स की दीवारों पे पिक्चर्स आ गए, मामा मामा, एक फैमिली को कहते हैं मामा मामा, मैंने खुद देखी बुक बच्चों की, यानी वो फैमिली अब ओल्ड फैशन है कि मामा पापा ओल्ड फैशन, दूसरी फैमिली मामा मामा, 2 माएँ होती हैं, तीसरी फैमिली पापा पापा, और ये कहानी कैसे असबर हो रही है, 2 औरतें पहले साथ रहती हैं, फिर वो डिक्लेयर करके शादी करती है क्योंकि अब लीगल हो गई, पूरे यूके में लीगल हो गया, सारे मुल्कों ने एक्सेप्ट किया, पादरियों ने कर ली ये चीज़ें, पहले हुकूमत का रोब होता है, फिर उसके बाद मजहब का थोड़ा था, मजहब ने भी मान लिया, हुकूमत ने मान लिया, इस वक्त जैसे आपके ये रोज़ घर में 2-3 कार्ड दिखते हैं ना, कोई हफ्ते की शादियों के, वहाँ अब सिर्फ औरत औरत की शादी का कार्ड आता है। मर्द मर्द की शादी का कार्ड आता है, और हमारी अपनी एक साथी की सुनाई हुई बात जो मैं भूल ना जाऊं, जिसका खेंट आपको दे देती हूँ, उन्हीं के स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं। कभी एक औरत आती है तो वो उसको मम कहती है, थोड़े दिन कहती गुजरी तो दूसरी एक औरत आई उसको भी मामा कह रही, कहती मुझे शक हुआ कि पता नहीं कौन औरत है बच्चे को ले जा रही है, वहां तो जिम्मेदारी भी बहुत है। खैर जब जाकर सारी कहानी खोली तो उसके रिकॉर्ड में क्या निकला कि नहीं डोंट वरी, इस बच्चे या बच्ची की दो माएँ हैं, यानी सिर्फ दो औरतों के साथ ये बच्ची रहती है, कभी एक आती है वो भी मामा है दूसरी भी है मामा। उसी स्कूल में काम करने वाली जो टीचर्स हैं जो भी हैं, उन्होंने अपनी शादी के कार्ड बांटे, दो लड़कियों ने आपस में सेलिब्रेट करके, जिसको वेडिंग कहते हैं, मैरिज होती है मैरिज, वेडिंग होती है सेलिब्रेशन, उन्होंने वेडिंग सेरेमनी की, सारे स्टाफ को बुलाया, दो औरतों की शादी हुई। पूरे स्कूल में स्टाफ ने एज अ जैसे कर्टसी और सेलिब्रेशन, तो वहाँ बहुत उनको गिफ्ट दिए, उनकी शादी भी अटेंड की। शादी के बाद वो दोनों जब आई तो उनको विश किया कि आपकी शादी हुई है। कुछ अरसा गुजर गया, अब क्या करें, अब इससे भी गंदी बात है। सिर्फ ये बताने लगी हूँ कि आपको नस्लों का गम करना है, क्योंकि जो जरा सी उधर से देखिए, मार्क्स एंड स्विंजर के स्वेटर इधर पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे, माइकल कोर का पर्स पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, सीके के बैग पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे, तो क्या ये नहीं पहुँचेंगे। पहले दो औरतें शादी करती हैं, कुछ अरसा रहती हैं, अब बच्चा चाहिए, क्योंकि इंसान की फितरत है, अब दो औरतें बच्चा कैसे लेंगी। एक सूरत क्या है, उसको अडॉप्ट कर लो किसी और का, नहीं लेना भी अपना। दो में से एक औरत किसी मर्द के साथ ताल्लुक कायम करती है, वो उधर से बन गया, वो जब बन जाता है जायगोट तो उधर से निकाल कर दूसरी औरत के रहम में रखवा देते हैं, तो दो माएँ हो गई, फिर बच्चा पैदा हो जाता है। मर्द एक बाहर से लिया, एक औरत से इंटीमेसी हो गई तो दूसरी के पेट में उस बच्चे को रख के पैदा करवा लेते हैं, दोनों बाद में मिलके पालती हैं। मत मारी जा रही है, हमारे होश गुम किए जा रहे हैं, मामला इससे बहुत ज्यादा गंभीर है जितना हम सोचे बैठे हैं। हमारे बच्चों के कोर्सेस में पढ़ाया जा रहा है ये सब कुछ, उनके तस्वीरों में जितने खिलौने हैं इस वक्त सब होमो के आगे होमोस, बच्चों के जो ड्राइंग्स बनवा रहे हैं वो उसकी बनवा रहे हैं। पहले लड़की लड़के का कॉन्सेप्ट था, स्कूलों में हमेशा ऐसे ऑपोजिट जेंडर को बिठाते थे, अब वो खत्म कर दिए, अब दो दो लड़कियां दो दो लड़के, और वो कहते हैं कुछ नहीं होता, ब्लू और पिंक का खत्म कर दिए कॉन्सेप्ट, सबको एक कर दो, कहते हैं ये एक्सट्रीमिज्म है। और लिख के रखिए, मैं रहूं ना रहूं आपको लंबी उम्रें दे, एक वक्त आएगा कि जब ये हम भी एक्सेप्ट करेंगे। आज मैंने उस माँ की बात को अपने दिल पे लिखा हुआ महसूस किया है, अरे भाई शुक्र करो बेटा मेरा लड़की से शादी करने को कह रहा है, चाहे वो गोरी है, मैं तो इस पे ही बड़ी खुश हूँ कि उसने लड़के से मुझे शादी को नहीं कहा। और हमारी नस्लें शादी से दूर हैं, इतना मुहाल हो गया आपको अपने बच्चों को शादी पे तैयार करना, कि पहले हो सकता है अब्बा अम्मा को बनाना इतना मुश्किल होता था 20 साल के, लड़के कहते थे शादी कर दो, अम्मा अब्बा कहते थे अभी अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ। तो नस्लों का गम करना है तो वी नीड टू लुक अराउंड, हम किस लाइफस्टाइल पे चल रहे हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हमारा जीने का मकसद क्या है। मुझे तो यहाँ आके वैसे ही हमें इसलिए बड़ा मजा आता है कि सेलिब्रेशन फन हर वक्त मौज है, हमारी तो ऐसी है ना, हर रोज के दर्द हर तरह की मसरूफियात, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए आधी आधी रात तक जागना, खाने पीने होटल, एक शादी एटलीस्ट 3 दिन पे तो काफी सालों से चल रही थी, अब कम से कम 5-6 फंक्शन है सिर्फ एक शादी के, पहले एक मेहंदी थी अब वो सारी मेहंदियां, एक ढोलकी थी अब हर दोस्त ने ढोलकी पार्टी करनी है, तो खाने कहाँ से पकते हैं, और एक एक जोड़ा जब शादी में पहन के जाते हैं वो कहाँ से आता है, तो मर्द तो फिर कुर्बानी का बकरा बनेंगे ना। हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया, और अगर आपने नस्लों की फिक्र सीखनी है तो इब्राहिम से सीखिए, ए अल्लाह मेरी औलादों का क्या होगा, जब अल्लाह ने उनको कहा कि इब्राहिम हम आपको इमामत के मनसब पे फाइज कर रहे हैं, तो कहा अल्लाह तरफ अमिन जरूरी आती, अल्लाह ने कहा ना ला या नाल जालिमिन, इब्राहिम मेरा अहद जालिमों को नहीं मिलेगा, और जालिम वो होता है जो गलत जगह पे सही चीज को या सही चीज को गलत पे रखता है, वद्दुशैयुन फी गैरी महल्लिही, किसी चीज को गैर मुनासिब जगह पे रखना, मैं इस क्लास को यहां रखने के बजाय यहां रख दूं, और जरा सी बेख्तियाती سے یہ گلاس زمین پہ گر جائے تو یہ اس پہ ظلم تھا. ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کو محسوس کریں. ہر اولاد امتحان کا پرچہ. آپ کے بیٹے آپ کے امتحان کے پرچے ہیں, آپ کی بیٹیاں آپ کے امتحان کے پرچے ہیں. ایک پرچے میں بھی فیل ہو گئے تو آگے نہیں جائیں گے, سپلی آئے گی اس میں. اور یہ آن گوئنگ اکاؤنٹ ہے. آپ ایک اکاؤنٹ کھول کے چھوڑ دیتے ہیں نا تو بعد میں جو مرضی اس میں جائے گا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے 5223, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, سٹاپ ہو جاتا ہے, مگر تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ کا, دوسرا علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, اور تیسرا نیک بخت بچہ جو بعد میں اس کے لیے دعا کرتا ہے. سوال کرتے ہیں خود سے, کیا ہمارے بچے ہمارے لیے دعائے خیر کریں گے؟ کیا ہمارے بچوں کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ دعا آتی ہے؟ کیا وہ پڑھتے ہیں؟ کیا وہ مانگتے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو غسل دینا آتا ہے؟ کیا ہمارے بیٹے ہماری نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ کیا ہماری بیٹیاں ہمیں کفنائیں اور دفنائیں گی؟ معذرت کے ساتھ آج ہماری بات بھی نہ مانیں اور ہماری موت کا صدمہ ان کو حافظ اور عالم اور متقی اور مومن بنا دے گا؟ نہیں, معاملہ بہت سخت ہے. تو گویا کہ تربیت اولاد ہماری ذمہ داری ہے. بچوں کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے, بولنے سے زیادہ کر کے دکھایا جاتا ہے. آج کے دور میں تربیت اولاد نسبتاً مشکل لگتی ہے. آج جتنا پیرنٹنگ پہ مواد ہے, انگلش اردو اور آپ باقی زبانوں کو جمع کریں تو تھیسز ہیں بڑے بڑے. پہلے اتنا نہیں تھا. آپ کی نانی آپ کی دادی یا آپ کی ساس نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی, کوئی پیرنٹنگ اے ٹو زی کے کورسز نہیں کیے تھے, اور ان کے لیے بچے کو اتنا بڑا چیلنج بھی نہیں تھے. کم سے کم 6-8 بچے تو ہوتے ہی تھے نا. ہماری نانی کے 8 بچے تھے, 6 تو عام تھے. پھر جب ہماری جنریشن شروع ہوئی تو 4 پہ سٹاپ لگ گیا کہ نہیں اس سے زیادہ ہوں تو شرم آتی ہے. کس سے شرم آتی ہے ہم کو؟ اور آج 2 بچے کم خوشحال کرانا. 2 بچے تو کبھی خوشحال ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ بیٹے کا بھائی نہیں ہے اور بیٹی کی بہن نہیں ہے. ایک بہترین تحفہ جو آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں نا, وہ ایک بھائی یا ایک بہن ہے. لیکن خرچے اتنے بڑھا لیے, میچنگ اتنی بڑھا لی, لائف سٹائل اتنا آرٹیفیشل کر لیا, تو پھر بچے کہاں افورڈ ہوں گے؟ ہاں, ان کے رنگ برنگے جوتے نہیں افورڈ ہوتے, ان کے میچنگ کلوتھز افورڈ نہیں ہوتے, ان کی بھاری فیسیں نہیں افورڈ ہوتی. بچہ تو آج بھی اپنی خوراک ساتھ لے کر آتا ہے, ماں کا دودھ. تو اللہ نے جو بات کہہ دی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اس پہ غور کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں یا ان کی تربیت کر رہے ہیں. لکھ کے دیکھ لیجئے گا جملہ. پالا جانور کے بچے کو جاتا ہے, گھوڑا پالنا, بلی پالنی, کتا پالنا, ہم بچوں کو پالنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. بچوں کی تربیت کیجئے. تربیت کیا ہے؟ تعلیم آکسفورڈ سے ہوگی تربیت, ہارورڈ یونیورسٹی کرے گی تربیت, آپ کی لندن یونیورسٹی کرے گی تربیت, آسلو یونیورسٹی کرے گی؟ نہیں. لکھ لیجئے, ہم اپنی نسلوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں مگر تربیت نہیں دے رہے. ہم اپنی نسلوں کو نصاب میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ ایک جملہ بول دوں, غلام بننا سکھا رہے ہیں. نوکر بنیں گے سارے, ملازمت کرنی ہے, کیریئر کیا نوکری. کوئی کمپیوٹرز میں نوکر ہو جائے گا, کوئی کہہ لیجئے کہ اکاؤنٹنگ میں چلا جائے گا. وہ جو کردار سازی علی تعلیم تھی وہ تو بہت پیچھے رہ گئی. کیا آج کا نصاب اخلاقی تربیت سے خالی نہیں ہے؟ بچے ماں باپ کے لیے مؤدب ہیں؟ کیا بچے ماں باپ سے پیچھے چلتے ہیں؟ کیا استادوں کا نام لینے سے پہلے وضو کرتے ہیں؟ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ہم جس انداز سے لیوش قسم کے لائف سٹائل کے ساتھ چل رہے ہیں, دولت ہے تو اس کا اظہار بس ایک ہی ہے کہ بچے کی فرمائش پوری کر دو, بچوں کو خوش رکھو, جو کہتے ہیں وہ کرو. تو پھر سوال کیجئے, کیا ہماری نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ نیکیوں کا بنیں گی یا گناہ جاریہ بنیں گی؟ जो करेंगे जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। सवाल लिखिए कि बच्चों की तरबियत का तरीका क्या है, कहाँ से बच्चे सीखते हैं। तो नस्लों की तरबियत का बुनियादी जरिया सबसे पहले क्या जुमला हम सुनते आए, माँ की गोद पहली दर्सगाह। पहली दर्सगाह माँ की गोद है। देखिए आप मैं जब बड़े हो जाते हैं और ख़ासतौर पे फिक पढ़ जाते हैं या हम हदीस पढ़ते हैं ना, फिर हम कहते हैं सल्लू कमा राही तुमोनी उसल्ली। अल्लाह के नबी सल्लम की खूबसूरत सी हदीस है कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। अब ज़रा सोचिए मेरी इस बात पे आज जाके गौर कीजिएगा, जैसे नबी सल्लम को नमाज पढ़ते देखा वैसे पढ़ो। और नमाज फ़र्ज किस उम्र में कर दी, 7 साल से 10 के बीच में। क्या 7 साल का बच्चा हदीसें पढ़ता नहीं पढ़ता, वो किसको देखेगा नमाज पढ़ेगा, जैसी माँ पढ़ेगी। बच्चा वैसी नमाज पढ़ेगा जैसी माँ और बाप पढ़ते हैं। बच्चे के लिए नमाज की वही वैल्यू होगी जो माँ बाप की होगी। तो आप जो अपने दूध से अपने अंदर के ख्यालात से बच्चे को देती हैं वो पहली दर्सगाह होती है। माँ के पेट में बच्चा माँ से ले लेता है, खून लेता है, दूध लेता है। माँ के पेट में अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को कोई बीमारी का जरासीम लग जाए तो लगता है। और वो कहानी भी आपने सुनी होगी ना कि बच्चा रो रहा है रो रहा है रो रहा है, सारे बच्चे रोते हैं और वो चुप ही नहीं हो रहा। और बिल आखिर न्यू बॉर्न बेबी कैसे चुप हुआ, जब हलक में चंद कतरे शराब के डाले गए। डॉक्टर्स ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ चूँकि ड्रग एडिक्टेड थी, बच्चा भी आदी हो गया। तो जब माँ के पेट से बाहर निकला तो उसको शराब नहीं मिली, तो नशा टूटने पर रो रहा था, तो शराब मिल गई तो चुप हो गया। तो जब बच्चा माँ के पेट से शराब का आदी हो सकता है तो गानों का नहीं हो सकता, झूठ का नहीं हो सकता, गिबतों का नहीं हो सकता। ये हम सबको देखना है। दूसरी चीज़ जो बच्चों की अप लिफ्टिंग में या उनकी ब्रॉटअप में बहुत अहम है वो रिस्क हलाल है। परसों किसी से बात हुई ना कि अब तो रिश्वत भी करोड़ों में रिश्वत चलती है, अंडर दी टेबल चाय पानी, इतनी महंगी चाय आपकी। जिस घर में रिस्क ऐसे आएगा ना वो नस्लें कभी नहीं बन पाएंगी। हमारे असलाफ अगर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला और इमाम बुखारी रहमहुल्ला और इसी तरह से आइमा कराम और मुहद्दिसीन को पैदा कर गए तो उसके पीछे एक रिस्क हलाल भी था। अल्लामा इकबाल के बारे में आता है कि उनके बाप अंग्रेज़ की नौकरी करते थे, जो कि उस दौर में ऐसे ही था जैसे आज कोई वेस्टर्न कंट्री में रहता हुआ अमेरिकन कंपनी में काम करता है। तो उनकी माँ के नज़दीक उनके शौहर की ये कमाई जायज़ नहीं थी कि वो अंग्रेज़ जिसने मुसलमान को काबू में किया तुम उसकी नौकरी करते हो। तो उन्होंने एक बकरी पाली हुई थी तो उसके दूध को बेचकर इनकी किफालत करती थी। कहीं ना कहीं असर होता है। गाड़ी में आप डीजल डाल दें सुप्रीम की जगह तो झटके देगी ना। बाहर ही की किसी की बात है, उन्होंने कहा कि जहाँ तुम देखो माँ बाप अच्छे हैं, देखने में मस्जिदों में जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, टेक केयर करते, लेकिन औलादें बिगड़ गई। और ऐसा बहुत हो रहा है, इस्लामी स्कूलों में जाने वाले बच्चे बिगड़ रहे हैं, मस्जिदों के टेक केयरर्स के बच्चे बदल रहे हैं। तो उन्होंने कहा दो में से एक चीज़ ज़रूर देखना, अल्लाह हो, दो में से एक वजह होगी, या तो उधर सूद होगा जो फाजन बे हर बे मिन अल्लाह व रसूली ही है, अल्लाह रसूल से जंग है ना, तो अल्लाह उस जंग को लड़ने के लिए हमारा बच्चा आगे ले आता है। वो बच्चा लड़ रहा होता है, वो अल्लाह की तरफ से एक लड़ाई होती है। बच्चों के मामले में हम बहुत सीरियस होते हैं, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। $600 प्राइवेट स्कूल की फीस देकर माँ बाप आम दर्जे पे इस्लामिक स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, और रेगुलर जो आम स्कूल हैं वो फ्री हैं, 100% फ्री हैं क्योंकि टैक्स पे चलते हैं। माँ बाप इस्लामिक स्कूलों में भेजते हैं, इसमें माँ बाप बहुत सीरियस हैं। वो चाहते हैं उनके बच्चों की तजवीद अच्छी हो, उनको दुआएं आ जाएं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम दिस दैट जब भी करते हैं, लेकिन उनके अपने घर के मामले गाड़ियों के मामले सूद पे मबनी है। और सूद के बारे में आज से इस ट्रिप से पहले मैं जितनी भी दफ़ा आई मैं सोचती थी मुझे एक लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक हैं, हमारे घर अपने बड़े फ़ख्र से कहते हैं भाई। वहाँ तो चलो गरीब है उसके एक कमरे का घर अपना तो है, यहाँ तो देखिए 20-20 साल के कर्जों पे आप घर लेते हैं। गाड़ी अपनी है तो अपनी है, नहीं है तो स्कूटर ले लेगा, है तो अपनी। लेकिन मुझे अब जो इस ट्रिप में और इससे थोड़ा सा पीछे हिंडते हमारे मुल्कों में भी कर्जे शुरू हो गए, बड़े बड़े इश्तेहारों के जरिए। अब बच्चियों की शादियों पे अपने अरमान पूरे करें, आइए हम आपको कर्जा देते हैं। यानी शादी करके बेटी की तो मरने तक, कब्र में जाने तक अब्बा जो है ना वो किस्त ही देता रहे कर्जों की। ये लेबोरेटेड ख्वाहिशात है। जब ख्वाहिश की हवा चलती है, हवा, तो बंदा इसी तरह के काम करता है। तीसरी चीज, आगे चलते हैं, थोड़ा सा वाइंड अप करती हूँ बात को। मुअल्लिम, उस्ताद, आपके बच्चों के उस्ताद कौन है? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, आप साइंस पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ लें, या नाजरा पढ़ लें, या हिफ्स कर लें, उस्ताद उस्ताद होता है। बच्चे के लिए उस्ताद ऐसे है जैसे आपके लिए कोई बहुत बड़ा हीरो, वो उसको फॉलो करता है। अल्लाह से जुड़ा हुआ उस्ताद दीजिए, वो साइंस पढ़ा के उठेगा, लेकिन इकरा बिस्मी रब्बी का पे अमल हो जाएगा। और वल्लाही आपने कई गंदे वाक़यात सुन भी लिए होंगे, उस्ताद अल्लाह से ना जुड़ा हो ना तो वो नाजरा पढ़ने वाले बच्चों की भी इज्जतें लूट लेगा। फिर बच्चे मस्जिदों में भी महफूज नहीं होते। फिर इसके बाद माहौल और मुआशरा, माहौल और मुआशरा बहुत अहम होता है। फिर आप देखिए कि आप मुआशरा अच्छा दीजिए, आपके बच्चों पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर कुरान और सुन्नत, आपके मेंबरों पर कुरान और सुन्नत कितना दिया जा रहा है? क्या सिर्फ फिरकावारियत के लिए हवाएं दी जा रही हैं या कुछ और दिया जा रहा है? और फिर उसके बाद आपके हालात, बाज़ लोग कहते हैं बाहर से जो बच्चे आते हैं बड़े भोले होते हैं, अक्सर लोग जाके शिकवा करते हैं मेरे बच्चे तो बेवकूफ़ी बने रहे, सारों के बच्चे उनका मजाक ही करते रहे। क्योंकि आपके मुल्क में बच्चे सियासत भी सीख जाते हैं और ख़ानदानी सियासतें भी बहुत सी होती हैं। तो बात यह है कि अगर माँ की गोद ही दुरुस्त ना रही तो बेशक बाप नबी ही क्यों ना हो, तबाही होगी। हज़रत नूह की मिसाल ले लीजिए, सूरह हूद में जाके पूरा वाक्य आप पढ़ लीजिए। और एक चीज़ जिसका इनकार आप कर नहीं सकते कि आज की तरबियत गाह मीडिया है। आज डिपेंड करता है कि आप इस्तेमाल कैसा करते हैं। दारोमदार, इस वक्त भी मीडिया के जरिए हमारी बात बाहर जा रही है। छुरी तो है लेकिन गला काटते हैं किसी का, या आप छुरी के जरिए से कोई सब्जी काट कर किसी का पेट भरते हैं। हमें अपने बच्चों की तरबियत मीडिया से नहीं करनी। सिर्फ तीन लफ्ज़ लिखिए आप जाकर गूगल के अंदर, सारी दुनिया का गंद आपको दिखेगा। आपके बच्चे शैतानी दरवाज़ा खोल लें या रहमानी दरवाज़ा खोल लें, वो उसी में से ही होगा। और फिर हम छोटी उम्र में बच्चों को कभी कार्टूनों के नाम पे, कभी उनको एंटरटेन करने के नाम पे, वीडियोस के नाम पे वो कुछ दिखा चुके होते हैं कि उनकी उम्र का बेहतरीन दौर गुजर चुका होता है। तो बच्चों की तरबियत का बेहतरीन वक्त 7 साल तक होता है। बच्चे का दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करता है, उसे नक़ूश तैयार हो रहे हैं, जैसे वो है ना माँ कद्दम हुआ सारा, प्रिंट्स मशीन पर मोहरें लग रही हैं। और आप अपना याद कीजिए, जिस गली से बचपन में गुजरे वहाँ जाकर क्या कुछ याद नहीं आ जाता? माँ बाप की बचपन की सिखाई बातें हमें आज भी याद हैं। बड़े होकर तो एक दुआ नहीं याद होती, बचपन में पूरे पूरे पहाड़े पढ़ लेते थे। तो बच्चों का बचपन ज़ाया ना कीजिए। अब सवाल लिखिए, 7 साल की उम्र तो आपके बच्चों की गुजर गई, अब क्या करें? बल्कि मैं कहती हूँ 12 साल गुजर गई, टीन एजर पर आ गया, 15 साल के बच्चों से क्या करें? चंद टिप्स दे के अपनी बात पूरी करूँगी। अब इसलाह की एक ही चाबी है, नंबर 1, उनसे मोहब्बत कीजिए। हम जिस वक्त बच्चों के साथ बिल्कुल बेबस हो के बद अखलाक और बदतमीज़ हो चुके होते हैं ना, और उनको तोए तोए करते रहते हैं हर वक्त ये वो, उस वक्त उनको प्यार कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए, उनका मान रखिए, उन पे एतबार कीजिए। माएँ कहती हैं हम बड़े बच्चों की तरबियत क्या करें, हमें खुद नहीं पता था, हम तो कुरान से अभी जुड़े हैं। तो मैं जाके कहती हूँ कि माफ़ी मांग लें। आज आप भी अगर ऐसा अल्लाह ना करे कोई किसी का एक्सपीरियंस हो, अपने वो बच्चे जब यंग हो चुके, 16 साल के हो गए और अभी नमाज नहीं सही पढ़ते, 25 साल का बेटा माशाल्लाह डॉक्टर बन चुका है और अभी तक उसको नमाज का तर्जुमा नहीं आता, और वो माएँ जिनके बच्चे 15 साल के हो गए हैं और अभी उन्होंने फातिहा से नाज तक कुरान नहीं सीखा, बड़े रिस्क में हैं। जाकर देख लीजिए आप कहाँ खड़े हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आप जितना ज़्यादा आज अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, माफ़ी मांगिए, सॉरी कीजिए, बेटा हमें पता नहीं था, हमने गलतियां की, तुम ना करो। उल्टा हम शर्मिंदा होते हैं, नहीं बच्चे हमें कहते हैं आपने खुद तो सब कुछ कर लिया, आप मुझे क्यों रोकती हैं। कहीं इसीलिए तो रोकती हूँ, किसी की गाड़ी गड्ढे में गिर गई है तो वो तुम्हें बचाएगा ना, कि भाई तुम ना जाने इधर गड़ा है। तो जरूरत है इस बात की कि सारी कोशिशें अब हम बच्चों की सलाह से ज्यादा उनका भरोसा जीतने पे लगाएं। अगर आपके बच्चे आप पे ट्रस्ट करने लग गए, आपसे दोस्ती हो गई, आपकी बात मानेंगे, नसीहत करना छोड़ते हैं हम, सॉरी, अपने टीनेजर बिगड़े हुए बच्चे को ये ना करो कि तुम करो, तुम मेरी सुनते नहीं हो, हजार बार तुम्हें कहे, ये कभी ना कहें कि मेरी बात नहीं मानते, ये है वो है, ये बात नहीं माने, ये छोड़ दीजिए, बल्कि उनको उनके लेवल पे लेके चले और ये बात दिल पे लिख ले कि आने वाली नस्लों को हमसे ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये कोरोना की सीरीज शुरू हो गई ना, ये भी किस्तवार प्रोग्राम है, ये ड्रामा चलेगा भी काफी लंबा, एक एपिसोड खत्म होगा फिर दूसरा होगा। अल्लाह ने वो फितनों का दरवाजा खोलना शुरू कर दिया जिसकी खबरें सही हदीसों में थी, लेकिन मोमिन के लिए इसमें भी खैर है, घबराइए नहीं। जब आने वाली नस्लों को बहुत सारे फितनों का सामना करना पड़ेगा तो हमें आज उसकी तैयारी करनी है। नबियों के गम क्या थे और आज हमारे गम क्या हैं, इनकी तालीम क्या होगी, इनकी शादी कहाँ होगी, ये इनका मुस्तकबिल कैसे बनेगा। हम सभी कमो बेश एक ही कल्चर से हैं, मेरा कुछ काफ़ी करीबी ताल्लुक पंजाब फैमिलियों से भी है ना, और यहाँ कराची में माशाल्लाह मल्टी के फैमिलीज हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, आप सभी जानते हैं। कमो बेश जो बात मैंने ऑब्जर्व की, इस वक्त हम पाकिस्तानियों का गोल ये है कि बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, अच्छी नौकरियों पे लग जाएं और फिर अच्छे घरों में उनकी शादी हो जाए। दो चीज़ों के वक्त हमारा असल पैसा खुलता है, एक जब हम घर बनाते हैं, सजाते हैं, बताते हैं, और एक जब हम बच्चे की शादी करते हैं। और फिर अक्सर लोग भोलपने में कह भी देते हैं और पैसा होता किस लिए, भाई आपको नहीं दिखती कि कारे जहां भी बाकी है, दुनिया में नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। इस सीरीज का शायद पहला लेक्चर था, नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है, फर्स्ट था, मेरा लाहौर से हुआ था। इतने काम है इस वक्त मुसलमानों के कंधों पे कि वो क्या डिच खोदी थी, वो क्या गजवे खंदक में 18-18 हाथ की खंदक किसी ने खोदी थी और दुश्मनों से आपने अपने मदीना को बचाया था। वल्लाह ही आज मैं आपको नहीं मायूस करना चाहती, लेकिन दुश्मन अपनी पूरी तैयारियों में है, हर तरह का बातिल फैल चुका है, बातिल के सारे रिसोर्सेज इस्लाम को बदनाम करने, नबी के ऊपर उंगली उठाने में लग रहे हैं और हम मुसलमान अपनी शादियां और अपने खाने और अपने कपड़ों पे कबक लगा रहे हैं। कपड़े अच्छे पहने, पर कोई जरूरी है कि आप हर शादी पे बनाएं, किराए पे लेके पहन लें, एक का कोई दूसरा पहन ले, शादी का जोड़ा हमेशा ही बनता है, कुछ जरूरी है कि 4-5 लाख का जोड़ा बनाकर दुल्हन को स्टेज पे बिठाएं। बामकसद और बेमकसद इंसान में एक ट्रेन का फर्क होता है, ट्रेन पे लोग हमेशा जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि ट्रेन फोकस्ड होती है, इसके बरक्स बस पे आने वाले रश में फंस जाते हैं, कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उधर जाना पड़ता है। तो हमारे गम कितने छोटे हैं, हम सिर्फ इस गम में जीते हैं कि मेरी बेटे को जो दुल्हन मिले ना उसकी नाक बड़ी पतली हो, वो गोरी हो, अंधेरे में बिठाओ तो रोशनी हो जाए, यानी बिजली का बिल कम आए। अकलमंदी है वैसे, पहली माएँ परियां ढूंढती थी, अब समझें कि नहीं परियां नहीं मिलनी लेकिन गुड़िया मिल जाए, गोरी हो छोटी सी, 16 साल से ऊपर ना, बेटा 26 साल का है, लड़की 16 कितनी सी, लेकिन जब मेरे घर आए ना तो 40 साल जैसी एक पूरी तजुर्बाकार औरत की तरह किचन संभाल ले, वो किचन नहीं संभालती, आपके बेटे को संभाल लेती है, फिर आपको गिले होते हैं, अब कमरे से नहीं निकलता, अब मेरा बेटा बदल गया। हम कितने छोटे गमों में जीते हैं। मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देती हूँ, मेरा गुमान है कि आप सब ने कम से कम एक सीरत की बुक तो पढ़ी होगी, तो जलियात नबूवत तो सब नहीं पढ़ी होगी, मुख्तसर सी है, कोई एक पढ़ के अल्लाह के नबी की जिंदगी के गम जाकर ढूंढिए, आपको पता लग जाएगा कि हमारे करने के काम क्या हैं। नंबर एक, कुरान के जरिए से पहचान करवा दीजिए आपने बच्चों को कोई ऐसा काम, या टिप्स हैं बस, कुरान से जोड़ दें। नंबर दो, अपने बच्चों को कोई ऐसा काम ना कहें जो खुद नहीं करते। आज के बच्चे बड़े बोल्ड हैं, वो कहेंगे आप खुद तो करते नहीं। نسلوں کی اصلاح کا غم ہے تو خود پر محنت کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں. اگلی بات، جو کام ان سے کروانا ہے وہ خود سے کروانا شروع کر دیں. بچوں کو مرفوع قلم سمجھیں، چھوٹے بچوں کو تانے نہ دیں. بلوغت کے بعد ڈھیلا نہ چھوڑیں، بلوغت سے پہلے بڑا نہ کہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث سب نے سنی ہے کہ تین لوگوں کے اعمال نہیں لکھے جاتے، جس میں ایک کون ہے؟ وہ بچہ جب بھی بالغ نہیں ہوا. اور یہ نسائی کی روایت ہے 3462. تو بچوں کے گناہ ہم سے کم ہیں، پہلے ہم خود اپنی فکر کریں. اصلاح کی پہلی ضرورت والدین کی ضرورت ہے. بچوں کی نافرمانی کی وجہ والدین کے عمل میں کمزوری ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یا پھر ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے. ایک اور چیز لکھیے، اپنے اندر تحمل پیدا کیجیے. جب ہم چار لفظ دین کے پڑھ جاتے ہیں نا، تو ہم ان ٹالرنٹ مدرس بن جاتے ہیں. قصور اپنا ہوتا ہے، بھگتاتے ان کو ہے. بچوں سے نرمی سے بات کریں، بار بار بھی بات کریں نا تو نرمی سے کریں. جیسے ریکارڈنگ چلائیں تو وہ بار بار ایک ہی جیسی چلتی ہے نا، نماز پڑھو بیٹا، اٹھو نماز پڑھو بیٹا، اٹھو نماز پڑھو، کہ وہ بدتمیزی کرنے لگ جاتی ہے آگے سے. ہم نماز کے لیے بھی اٹھاتے ہوئے اینڈ پہ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، ایسا نہ کیجیے. پھر نصیحت کرتے ہیں مختصر اور واضح بات کریں. بچوں کی خامیاں دوسروں کے سامنے نہ بیان کریں. اگر چاہتے ہیں کہ وہ ہماری نصیحت سنیں تو والدین بچوں کی بات بھی غور سے سنیں. سبق آموز کہانیاں اور واقعات سنا کر ان کی نصیحت کریں. اپنے بچے کا پسندیدہ انسان بننے کی کوشش کریں. سمجھیں آپ ہم کیا کہتے ہیں؟ بچے ہمارے پسندیدہ ہو جائیں؟ نہیں، آپ بچوں کے فیورٹ پیرنٹس بن جائیے. تہذیب یعنی ان کو ادب سکھاتے کے لیے خود کو مہذب بنائیے. جائز ضروریات پوری کریے مگر ضد مت مانیں. اپنی خوشی سے بچے کو جو مرضی لے دیں، لیکن جب وہ آپ کو ٹارچر کرے یا آپ کو بلیک میل کرے تو کبھی نہ مانیں. اور اسی طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہیں. انت و مالک لیبیک، آپ کا مال اور آپ خود اپنے باپ کے ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 3530. اور اس کے بعد ایک دعا جو آپ سب کو آتی ہے، ہم سب مل کے پڑھ لیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یاد رکھیے، دعاؤں سے وہ کام ہو جاتا ہے جو کوششوں سے پورا نہیں ہوتا. ابھی ہم نے صرف اس موضوع کو ٹچ کیا. اگر آپ کو تھوڑا سا یہ احساس اگر محسوس ہو ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کریں، تو آپ اپنے لیے قرآن کو چوز کریں. الحمدللہ کئی سالوں سے یہی کام نور القرآن کے پلیٹ فارم سے بھی کر رہے ہیں. آپ میں سے شاید پاکستان میں اتنے لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بات جہاں بھی پھیل چکی ہے. دو تین جملوں میں قرآن کے نور کو عام کرنا ہمارے اس بہت سمپل سا پلیٹ فارم ہے. یہ کوئی جماعت نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا انسٹیٹیوٹ جس کا نام نور القرآن ہے، یہ کئی سال سے باہر ہے. اس کی بیس اصل میں امریکہ سے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد یورپ ہم آئے ناروے کے رستے، پھر ناروے سے ہوتے ہوئے یو کے پیرس، پھر اس کے بعد الحمدللہ اسکاٹلینڈ اور جتنے بھی ادھر کے کنٹریز ہیں، جرمنی، ادھر ہمارے انسٹیٹیوٹ بنتے ہی گئے. پاکستان میں ہمارا تعارف بہت نیا ہے. 2018 میں ہمارا پہلا ادارہ جو کہ کہہ لیجئے کہ جوہر آباد کے تھرو بنا، ایک دورہ قرآن ہوا تھا. ہر سال دورہ قرآن فرق ہوتا ہے، اللہ کرے اس سال کا بھی آپ کے نصیب میں ہو. تو وہاں سے یہ بیچ شروع ہوا تھا، لیکن اس میں ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بس ہاتھ پکڑ لیا. ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا ہاتھ پکڑتا ہے، بار بار چھوڑتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے بہت ساری چیزیں ادھر ادھر نظر آ رہی ہیں. لیکن جب اللہ بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے نا، تو وہ نہیں چھوڑتا. ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. دن رات اللہ کی رحمتوں سے کام ہو رہا ہے. ایک سے شروع ہوتے ہوتے دو تین ڈفرینٹ جگہوں پہ جوہر آباد میں کلاسز ہوئیں، پھر اس سے بڑھتے ہوئے آگے گیا اور سیالکوٹ میں ہمارا سب سے پہلا ادارہ بنا تھا. لیکن اس میں ذرا سا ٹائم لگا ہمیں گرو کرنے میں. ابھی بھی اسٹل اسٹرگلنگ انسٹیٹیوٹ. گجراںوالہ تیسرا ایک نام آ گیا نور القرآن کے ساتھ، جس کا اس وقت ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں انشاءاللہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی کہ ڈیڑھ مرلہ، ایک سسٹر ہے ان کا گھر ہے چھوٹا سا 1.5 مرلہ، پتہ نہیں آپ اس کو کتنے گز کہیں گے. اس میں انہوں نے کلاسز شروع کی، اوپر ایک کمرے میں خود رہتی تھی، نیچے ادھر آئیں. تو اس میں الحمدللہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہاں لوگ بیٹھنے کی، بچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ بچی. शिर्क और बिदत के बीच में डूबा हुआ छोटा सा शहर जोहराबाद, जहाँ जहालत गुरबत और आप कह लीजिए कि शिर्क था, अल्लाह ने उस जगह को क्यों चूज़ किया ये अल्लाह को पता है। ये हमारा वहाँ पहला कैंपस है, जब इस वक्त मैं भी इधर ही रह कर आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसकी कुछ तस्वीरें थी, किसी का घर था जो ख़रीदा गया 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स के साथ। वहाँ अब इतनी वुस्सत है कि वो भी कम हो गया। फिर वहाँ लोग हॉस्टल की डिमांड करने लगे। ये लास्ट रमज़ान में अल्लाह ने हमें ये गिफ्ट दिया, एक छोटा सा घर ख़रीद लिया हॉस्टल के लिए। और इसके बाद हर जगह आपको एक रंग ज़रूर दिखेगा कि लोग माशाल्लाह मोहब्बत से काम करते हैं, सारे वॉलंटियर हैं, अल्लाह ही उनको बदला देगा। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हम सब से राज़ी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अय्युन व जअलना लिलमुत्तकीन इमामा। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह हमारे सब जिंदा और जो फौत हो चुके हैं सबको बख्श दे। या अल्लाह इस घर पे अपनी रहमतें फरमा। या अल्लाह इनकी इस नेकी को कबूल फरमा। या अल्लाह इनसे और नेकियों के काम ले ले। या अल्लाह हमारी नेकियों को कबूलियत का रंग दे दे। हमारे वालदैन जो तेरे पास चले गए उनकी बख्शिश फरमा। जो दुनिया में उनको सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे। बीमारियों से बचा। या अल्लाह हमारी नस्लों को भी हर फितने से बचा। या अल्लाह हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों का क्या बनेगा। या अल्लाह ये गम लगा दे, हमें इस गम में जीने वाला बना। दुनिया के गम छोटे और आखरत का गम बड़ा कर दे। या अल्लाह हमारा यानी अल्लाह नया कोर्स हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। या अल्लाह ये भी हम सब के लिए आसान फरमा। तो अल्लाह ताला आपसे मेरे से ये काम ले लें। जजाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।